आस्तिक अपनी गाड़ी स्वयं चला रहा था और पीछे की गाड़ी में मार्क और कुछ अन्य लोग बैठे थे। वे उस स्थान पर जा रहे थे जहां उस व्यक्ति को रखा गया था जिसने अरुणिमा को ड्राइवर बनकर अपने साथ ले गया था। उस आदमी का नाम जीवन था, लेकिन आज उसकी मौत तय थी। आस्तिक सीधे उस अड्डे पर पहुंचा जहां उसने जीवन को बंद करके रखा हुआ था। जीवन की हालत ऐसी हो चुकी थी कि धोबी का कुत्ता भी उससे बेहतर लगता। वो बिल्कुल फटेहाल पजामे की तरह हो गया था और अपने जीवन के लिए उन सबसे भीख मांग रहा था जो उसके सामने उसकी मौत बनकर खड़े थे। पर ये लोग तो बस मौत बनकर खड़े थे, मौत के सौदागर से तो अभी उसका सामना होना बाकी था। आस्तिक के आने की आहट पाकर उसके सारे आदमी सतर्क हो गए। ये वही लोग थे जो आस्तिक की जेड प्लस सिक्योरिटी टीम में शामिल थे। इन्हीं लोगों को लेकर आस्तिक अरुणिमा को बचाने गया था। ये लोग सिर्फ आस्तिक के आदेशों का पालन करते थे, उसके बाद ही किसी की सुनते थे। आस्तिक के अलावा बाकी सबके लिए ये अंधे, गूंगे और बहरे थे। आस्तिक ने बस एक ही आदेश दिया था, इससे सच उगलवाओ, और अगर ना बोले तो इसे इतना मारो कि ये खुद मौत के लिए हमसे भीख मांगे। और इन लोगों ने अपने बॉस के आदेश का बखूबी पालन किया था। आस्तिक के आने का एहसास होते ही सारे आदमी एक तरफ हो गए और सिर झुकाकर खड़े हो गए। आस्तिक सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाता हुआ उस बदबूदार कमरे में दाखिल हुआ। जीवन ने जब अपने सामने आस्तिक को देखा तो उसकी सांसें चल रही थीं, यही बहुत बड़ी बात थी, वरना वो तो खुद को मरा हुआ ही समझ रहा था। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं और वो घबराहट में आस्तिक को देखने लगा। उसके हाथ पीछे की ओर जंजीरों से बंधे हुए थे, इसीलिए वो हाथ नहीं जोड़ पा रहा था, लेकिन उसकी नज़रों में रहम की भीख साफ नज़र आ रही थी। मालिक, मालिक, मुझे माफ़ करदा मालिक, मुझसे गलती हो गई। जीवन घुटनों के बल गिरने लगा, गिड़गिड़ाया, लेकिन आस्तिक पर इसका ज़रा भी असर नहीं हुआ। आस्तिक सीधे जीवन के पास आया और उसके सामने पंजों के बल बैठ गया। आस्तिक के मुंह में सिगरेट दबी हुई थी और उसकी आंखों में आग थी। ये वही शख्स था जिसने अरुणिमा को नकली ड्राइवर बनकर अपहरण किया था और फिर इस शहर से भागने वाला था। वक्त रहते आस्तिक को इस बारे में पता चल गया था और उसने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया था। इस आदमी को तो चलती ट्रेन से उठाया गया था। इसके पास इसकी बीवी और बच्चों तक को भनक नहीं लगी थी कि ये पीछे रास्ते से गायब हो गया है। आस्तिक को अपने सामने इस तरह बैठा देखकर जीवन की पैंट गीली हो गई थी। आस्तिक की खतरनाक नज़रें जीवन के ऊपर से उसके पेट तक गईं, जहां अब जख्मों का पंखा खुला था। ये देखकर आस्तिक के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अपनी उंगलियों में सिगरेट को दबाया और जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन वहां सिर्फ आस्तिक ही हंस रहा था। मैंने पहले ही कहा था ना, आस्तिक के आदमी सिर्फ उसका आदेश पालन करते हैं, और इस वक्त आस्तिक ने उन्हें हंसने का आदेश नहीं दिया था। उसकी हंसी कहीं से भी सामान्य नहीं लग रही थी। वो एक दानव की तरह हंस रहा था और उसकी हंसी उतनी ही डरावनी थी। आस्तिक ने अपनी उंगलियों में दबी हुई जलती सिगरेट को धीरे धीरे जीवन की ओर बढ़ाना शुरू किया और इसी के साथ उसकी हंसी धीरे धीरे खूंखार होती गई। फिर उसने वो जलती हुई सिगरेट जीवन के प्राइवेट पार्ट पर दबा दी और जीवन बुरी तरह से बिलबिलाने लगा। जितना वो दर्द में तड़पता, जितनी उसे तकलीफ होती और जितनी बार वो अपनी मौत की भीख मांगता, उतना ही आस्तिक को सुकून मिलता। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था जब अरुणिमा आग के घेरे में लिपटी हुई थी। अगर आस्तिक वक्त पर नहीं पहुंचता तो आज अरुणिमा उसके साथ ना होती। आस्तिक ने एक हाथ आगे बढ़ाया और उसके एक आदमी ने जल्दी से आस्तिक के हाथ में कटर पकड़ा दिया। लेकिन ये कोई सामान्य कटर नहीं था, ये एक बड़ा, बेहद धारदार कटर था जो किसी की हड्डी को एक मिनट में काटकर अलग कर दे। आस्तिक ने अपना दूसरा हाथ जीवन के पेट पर से हटाया और अब उसके एक हाथ में कटर था। दूसरे हाथ से उसने जीवन की पैंट खींची और कटर को उसके पेट के अंदर तक पहुंचा दिया। जीवन को महसूस हो रहा था कि आस्तिक अब क्या करने वाला है। कटर उसके प्राइवेट पार्ट को छू रहा था। मैं बस एक बार पूछूंगा, जवाब देना है या नहीं ये तेरे ऊपर है। नाम बता, जिसने तुझे मेरे ड्राइवर की यूनिफॉर्म दी और मेरे घर के अंदर घुसाया। जीवन तड़पने लगा और बिलखते हुए कहने लगा, मालिक, मालिक, माफ़ कर दो, मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मुझे उसका नाम नहीं पता। मैं आपकी कंपनी के बाहर एक मामूली सी समोसे की दुकान लगाता हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरी बेटी मालिक, मेरी बेटी सिर्फ 12 साल की है। स्कूल से घर लौटते वक्त किसी ने उसे रास्ते से उठा लिया। उसके बाद मुझे एक अनजान शख्स का फ़ोन आया। मेरी दुकान पर एक बैग रखा था जिसमें आपकी कंपनी के ड्राइवर की यूनिफॉर्म थी। उसी अनजान शख्स ने मुझे ये काम करने को कहा और धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा करेंगे और फिर उसे जान से मार देंगे। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इस काम के बदले कोई पैसे नहीं लिए और मैं उस शख्स को नहीं जानता जिसने मुझे ये सब करने को कहा। आस्तिक की आंखें तीखी हो गईं और उसने गुस्से में कहा, तो तूने अपनी औलाद के लिए मेरी बीवी का इस्तेमाल किया? कैसी बातें कर रहे हैं मालिक, गरीब आदमी हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ, अपनी औलाद से प्यार करता हूँ। दुनिया का हर बाप अपनी औलाद से प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर जाता है। मुझे पता था मालिक, अगर आपने मुझे पकड़ लिया तो मेरी मौत तय है, लेकिन फिर भी मैंने ये काम किया क्योंकि उन दरिंदों के पास मेरी बेटी थी। आस्तिक के चेहरे पर एक लहजे में ही मुस्कान उभर आई। तो तू अपनी बेटी से इतना प्यार करता है कि उसके लिए तू मुझसे बगावत करने पर उतर आया, ये जानते हुए भी कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना प्यार करता है अपनी बेटी से? एक बाप अपनी औलाद से कितना प्यार करता है इसे कभी लफ्जों में नहीं बताया जा सकता। मुझे नहीं पता मालिक आप क्या सोचते हैं, लेकिन अगर मेरी जगह खुद को रखकर देखो तो शायद आपको लगे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने वही किया जो मेरी औलाद के लिए सही था। अपनी औलाद के लिए हर माँ बाप स्वार्थी हो जाते हैं और इसका एहसास आपको तब होगा जब आप खुद बाप बनोगे। आस्तिक के कान खड़े हो गए थे। उसके चेहरे के भाव अचानक नरम पड़ गए, होंठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा। तो बाप बनने के बाद ही बाप के एहसास को समझा जा सकता है? आस्तिक की उस मुस्कान का क्या मतलब था, ये तो सिर्फ वो खुद ही जानता था। लेकिन उस मुस्कान को देखकर जीवन का कलेजा कांप उठा। आस्तिक ने हंसते हुए जीवन को देखा और कहा, वैसे तो मेरी दुनिया में माफी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन तुझे मैंने माफ किया। जा, बख्शती है तेरी जिंदगी। जैसे ही जीवन ने यह सुना, उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई, आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक ना सकी, क्योंकि अगले ही पल आस्तिक ने वो कटर चला दिया था। जीवन का पूरा चेहरा दर्द से तड़प उठा। वो वहीं बैठा हुआ चिल्ला रहा था, दर्द में कराह रहा था। आस्तिक खड़ा हुआ, उसके हाथों में खून से सना हुआ कटर था, और वो हंसते हुए कहता है, तूने ये सब अपनी बेटी के लिए किया ना, तो अब अपनी बेटी के साथ ही खुश रह। दूसरी औलाद की तुझे क्या जरूरत थी? भले ही तू पहला इंसान है जिसे मैंने माफ किया, लेकिन जो तूने किया उसकी सजा तो जरूरी थी ना। कटर को वहीं फेंकते हुए आस्तिक बाहर की ओर बढ़ा और अपने आदमियों से कहा, होश में आ जाए तो जहां से उठाया था वहीं ले जाकर पटक देना, अगर किस्मत में हुआ तो इसके घर वाले ढूंढ लेंगे। आस्तिक बाहर आया, जहां पहले से ही नीरज और मार्क खड़े थे। वे आस्तिक को देखते ही सतर्क हो गए। आस्तिक अपनी गाड़ी के पास आया, दरवाजा खोलते हुए बोला,
पता करो इसके पास वो अनजान फोन कहाँ से आया था और इसकी लड़की को किन लोगों ने अगवा किया था। ये तो सिर्फ एक मोहरा है, मुझे असली खिलाड़ी तक पहुँचना है।